और सरल किया है। जितने भी ग्रंथ हम लोगों के प्रणीत हुए सब इसका अनुसरण किया। सब जितने रूप गोस्वामी इत्यादि भक्त गोस्वामी सिंधु पूजन निर्मल इत्यादि ग्रंथ का भी प्रणय में इससे बहुत सी चीजों को ग्रहण तो हम लोग कुछ दिन पहले भक्ति रसायन का पाठ किया था, उसमें सनातन गोस्वामी की भागवत की और दूसरी चीजों की शिकायत जो है उसमें हम लोगों ने दिया बहुत ही सुंदर सरस हृदय को बनाने का। तो बहुत दिन से इधर उधर घूमते गए 500 महीने हृदय निरस हो गया एकदम बाल माता जी कुछ भक्ति का साथ है। श्रवण भी एक भक्ति है इसके माध्यम से भी अपने हृदय को सरस इसलिए सोचा कि भक्ति रसायन का पुनः कुछ विशेष में अनुशीलन किया। इसलिए हम लोग जो वेद भगवतामृत हम लोगों ने पाठ किया ग्रंथ का जो मूल है उसमें जो दो खंडों में जो वर्णन किया गया है उसको थोड़ा सा हम लोग फिर से स्मरण कर तब फिर उसको हम पाठ। इसलिए आज हम उसका दो खंडों में से पूर्व खंड के संबंध में कुछ हम लोग अनुशीलन ये बृहद भगवतामृत सनातन गोस्वामी के द्वारा दो खंडों में वर्णित है। पूर्व खंड का नाम भगवत कृपा सार निर्धार, भगवत कृपा सार निर्धार। पहला भगवत कृपा का सार क्या है, भगवत कृपा क्या है और उसका सार क्या है, उसका निर्धारण। और दूसरे खंड का नाम है गोलोक महात्म निरूपण खंड। यहाँ पर गोलोक से वृंदावन तक का सभी संकेत गोलोक महात्म निरूपण खंड। इस पूर्व खंड में 7 अध्याय और उत्तर खंड में भी 7 अध्याय। तो जब हम भक्त कृपा निर्धारण खंड में चलते हैं, भगवत कृपा सार निर्धारण खंड में चलते हैं, तो भगवान की कृपा जब भौम जगत में होती है इस भौम जगत में तो उसे भौम भौम अध्याय भौम लोक में भगवान की कृपा निर्धारण को करते हैं उस दृष्टि से तो उसको भौम खंड दिव्य खंड। जब ये भौम पृथ्वी लोक को पार करके जब स्वर्ग इत्यादि से स्वर्ग से लेकर के ब्रह्म लोक तक वो जो होती है भगवत कृपा तो उसको कहते हैं प्रपंच आदि। जब शिव लोक में पहुंचती है तो ये प्रपंच के अतीत हो गए जो शंकर जी जो कौन सदाशिव जो भगवान की सेवा करते हैं ये प्रपंच के अतीत है किंतु वैकुंठ ये नहीं हुई इसलिए ये प्रपंच अतीत हुई। और इसके बाद में भक्त वैकुंठ में ये भक्त और प्रिय इसके बाद में प्रिय खंड इसके बाद में प्रियतम प्रिय माने प्रहलाद महाराज इत्यादि भक्त खंड में ये अम्बरीश अम्बरीश जी आए और उसने प्रहलाद जी का लिया और परसों भक्तों का लिया। इसके बाद में प्रिय प्रिय खंड में आए पांडव लोग इत्यादि और प्रियतम रूप में उद्धव इत्यादि द्वारका वास। और इसके बाद में 7वां हो गया तो ये
6 हुआ
प्रियतम
6
और 7वां पूर्ण कृपा पात्र पूर्ण कृपा पात्र गोपीगण ब्रज के ब्रजवासी को। अब उसमें तात्पर्य ये 7 खंड और उत्तराखंड में पहले वैराग्य गोलोकखंड बनकर वैराग्य इसके बाद में ज्ञान इसके बाद में भजन इसके बाद में वैकुंठ इसके बाद में प्रेम और अभीष्ट लाभ और 7वां जगदानंद भेद से 7
वैराग्य
ये 7 ये
वैराग्य ज्ञान भजन
वैराग्य ज्ञान भजन वैकुंठ प्रेम अभीष्ट लाभ और अंत में जगदानंद, ये सात अध्याय उत्तर खंड। और पहले खंड में प्रधान वर्णन का विषय क्या है? मंगलाचरण। ग्रंथ का विवरण, मंगलाचरण में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन, ये आशीर्वाद मंगाया, भक्ति का इत्यादि का ये मंगलाचरण किया। इसके बाद में भक्त तत्व ग्रंथ विवरण, ग्रंथ का विवरण उन्होंने किया। इसके बाद में भक्ति तत्व का विषय उसकी मैया की जिज्ञासा, इनकी परिचित महाराज की जिज्ञासा। इसके बाद में उत्तर उनका चला, प्रयाग तीर्थ में मुनियों का समाज बैठा, उसमें नारद जी और सब लोग भक्त, वहां पर परस्पर परस्पर ये कह रहे हैं कि आप धन्य हैं, आपने बड़ी भगवत भक्ति है, आपकी भगवान की कृपा, आप भगवान के कृपा के पात्र हैं, इसीलिए इस सबका खंड का नाम हुआ भक्त भगवत कृपा निर्धारण। आप भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। वो कहते हैं कि अरे हम मैं तो तुच्छ व्यक्ति, आप भगवान के कृपा, और सभी अपने अपने भक्ति में अपने अपने इसमें बड़े उत्फुल्ल आनंदित हो रहे हैं कि मैं भगवान का कृपा, किंतु दीनता से कह रहे हैं कि नहीं आप बड़े भगवान। इस तरह से ये चल रहा था। इतने में कोई ब्राह्मण आया, वो उस जगह का भूम्य अधिकारी था, राजपुरुष था, जमींदार टाइप, और वो विष्णु भक्ति उसकी कैसी थी, सालग्राम की सीधा स्वर्ण के सिंहासन में रख करके और ऋषि मुनियों को बुला करके प्रसाद निवेदन करके उनका पूजन करके वो प्रसाद वैष्णवों को दिया। इसके बाद में आचरण डाल गोखर इत्यादि सब लोगों को वो प्रसाद, और फिर ठाकुर जी को अपने उसमें रख करके जब जाने लगा तो नारद जी ने कहा अभी अभी हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप ही भगवान के सबसे बड़े कृपा, अब यहीं से हो जाते हैं। जो भगवान की सेवा करता है, शालग्राम की सेवा करता है जगत में, वो भगवान का कृपा। किंतु इसमें एक विचार करना है, कौन माने क्या, कुछ कर्म निष्ठा कुछ ज्ञान निष्ठा इस जगत की भक्ति में, इसलिए इसको लिखा जो भौम खंड। तो उस राजा में कुछ जो स्वरूपता जो भक्ति है जिसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं, उसमें होने में भी उनमें कुछ आरोप सिद्धा इत्यादि का कुछ प्रवेश सिद्धा भक्ति का भी नहीं, विचार उनमें नहीं है, सिद्धांत उनमें नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया दक्षिण देशवासी को, एक केरल के राजा को जो कि पद्मनाभ की सेवा, उनका सर्वस्व उनकी चरणों में नहीं था। नारद जी ने कहा आप ही सबसे बड़ी भगवान की पात्र हैं, मैं अरे यदि साक्षात रूप में सेवा करने वाले इंद्र हमसे श्रेष्ठ हैं, हम तो इनकी शिवग्रह की पूजा करते हैं, और ये किसकी पूजा करते हैं, साक्षात रूप में उपेंद्र जी की सेवा, बामन जी की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा इंद्र ने, मैं उपेंद्र की सेवा करता हूँ इसलिए श्रेष्ठ, अरे ब्रह्मा जी हैं शास्त्र शीर्षा विष्णु की,
रहते नहीं कभी,
और हमारा लोग तो बहुत जल्दी क्षय हो जाता है और उनका लोग नहीं होता है, मैं समझता कि वो ब्रह्मा भी विष्णु ही। किसने कहा?
इंद्र ने।
वहां पर पहुंच गए और वहां जाकर के ब्रह्मा की स्तुति करने लगे, आप तो सृष्टि करने वाले हैं, पितामह हैं, सब देवताओं के सबके श्रेष्ठ हैं, आप भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। ये कहने में भी ये गलती मेरी है, आप तो वही तत्व हैं जो हुआ। बस सुनते ही उन्होंने कान में उंगली लगाई, है इतने दिन तक तो समझाया, तुम बात को समझा नहीं, मैं भगवान का कृपा पात्र, अरे मैं तो भगवान की सेवा में रोड़े लगाने वाला, बिकने बाधा देने वाला, इसलिए हमारे ऊपर में प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर में क्षमा नहीं करते हैं। अरे यदि भक्त देखना है तो तुम देखो शंकर महादेव, वो उनका कोई अपराध भी नहीं करते हैं, वो लेते भी नहीं, और उनके एक तरह से अभिन्न है, मैं अभिन्न नहीं, वो अभिन्न हरि हर एक आत्मा है। आप उनका जब देखेंगे भक्ति तो आप बड़े प्रसन्न होंगे। वहां पर पहुंच गए, अब यहाँ तक जो था, अब ये क्या था, यहाँ तक दिव्य था, अब इसके बाद में जब शंकर के यहाँ पहुंचे तब ये क्या हो गया,
प्रपंच,
और प्रपंच कहाँ तक है, ये ब्रिजा को पार कर, इसलिए इनकी भक्ति क्या हुई?
प्रपंचाती
पंचाती। किंतु अभी बैकुंठ ये नहीं हुई, बैकुंठ से नीचे वहां पर विष्णु का शंकर जी का महात्मा वर्णन किया गया। कैसे भगवान के दिन रात कीर्तन करते रहते हैं, अपनी पत्नी पुत्र साथ लोग परिकर के साथ उनका कीर्तन करते हैं। अब वहीं पर शंकर जी से मिले, शंकर जी अरे मैं उनसे अभिन्न हूँ, हरिहर एक आत्मा। खबरदार ये बात, अरे विष्णु के परिकर जो हैं वो सबसे भगवान के जय विजय इत्यादि और कौन सब परिकर में श्रेष्ठ किंतु कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जैसे और कोई श्रेष्ठ नहीं है, जाकर के लक्ष्मी जी को पकड़ना। जब वहां से जब चलने लगे तो शंकर जी ने उनको दूसरे रास्ते से लौटा कर दिया। ये देखो लक्ष्मी जी ने कहा जी वहां लक्ष्मी जी सबसे श्रेष्ठ है, किंतु लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद महाराज। ये सुखल होता है। ये भक्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है कि पापा भगवान की सेवा के ऊपर कौन अधिक सेवा करता है, इसलिए आप लक्ष्मी से भी उनको श्रेष्ठ। प्रहलाद के पास में पहुंचे, जो शंकर को जो कृपा नहीं मिली, यहां तक कि लक्ष्मी जी को कृपा नहीं मिली, भगवान ने ब्रह्मा शंकर ये सब लक्ष्मी जी ने भी आपको आगे कर दिया नृसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए, इसलिए आप उनके सबसे बड़े कृपा। भगवान ने आपको कुछ मुक्ति भी देना चाहे, आपने पैरों से ठुकरा दिया, आपने ग्रहण नहीं किया, आपके समान और उनका कोई प्रिय नहीं। उन्होंने कहा कि देखो अब तक तो तुम नहीं ठीक से समझ रहा, अभी इस चीज को समझो। भगवान का प्रिय कौन होता है? भगवान की प्रीति करने वाला। प्रीति कैसे समझी जाएगी? प्रीति का लक्षण क्या है? प्रीति का लक्षण
सेवा के माध्यम से
ममता किसमें अधिक है? ममता कैसे ठीक हम करेंगे? ममता इसमें है उसके लिए सब कुछ समर्पित होता, उसकी सेवा करेगा। जब तक सेवा नहीं किसी के प्रति है तब तक वो प्रीति का कोई भौतिक मूल्य नहीं है, ममता भी नहीं है। इसलिए हमको प्रहलाद महाराज जी का हमको भगवान में ऐसी कोई ममता नहीं, मैं सर्वत्र भगवान को देखता हूँ, ये बात तो ठीक है और सब में हमारा प्रीति है, किंतु भगवान की मैं कोई खास सेवा नहीं। यदि प्रीति देखनी है तो सेवा दे दो, तो सेवा हमारी से लाख गुना श्रेष्ठ है किसकी? यदि तुम यदि भगवान का कृपा पात्र समान देखना चाहता है तो हनुमान के पास में जाओ, तो यकीन पुरुष वर्ष में प्रेम में विरह में रो रहे हैं, ऐसी कोई सेवा नहीं जो नहीं किए हैं इन्होंने, और फिर भी उनके विरह में पकड़ के रो रहे हैं। हनुमान जी के पास में जब वो पहुंचे तो फिर पंचातीत के बाद में ये भक्त आए। अब चले हैं हनुमान जी के। हनुमान जी ने कहा अरे प्रहलाद जी ने तुमको बतलाया कि नहीं, ये ममता के ऊपर में भक्ति और सेवा के ऊपर में प्रतिष्ठित है। जो भगवान की जिस प्रकार से सेवा करता है, अभी सब गुरु पर भी इसको ले लें। भगवान माने क्या? भगवान उनके परिकरों को भी ले लो, गुरु के लिए भी ऐसे ये सब उस पर लेते जाओ। तो देखो हनुमान जी सब समय उनकी सेवा करते हैं, तो हनुमान जी वही कह रहे हैं मैं सेवा तो करता हूं, किंतु हमारी अपेक्षा सेवा पांडव लोग शेष प्रेम से करते हैं। मैं इनका दास हूं। दास और प्रभु के बीच में एक मर्यादा की दीवार खड़ी रहती है, उसको तोड़ करके भेद करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये मर्यादा जब तक रहती है तब विषम सेवा नहीं होती, वो सब जब तक होता है यह अड़चन है। वो सेवा सेवा नहीं बल्कि क्या है? मर्यादा पूर्वक जो सेवा होती है वो अर्चक के ही अंदर परिवर्तन। इसलिए पांडवों के पास में जाओ, पांडव उनके सुहृद हैं, कृष्ण उनके साले हैं, कोई बहन ही बने हैं, कोई अपनी बुआ जी के लड़के हैं, कोई भाई बने हुए हैं, कोई सेवक बन रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पर मर्यादा कम है, ममत्व अधिक है। ममत्व इतनी घन है कि जहाँ पर सेवक भी नहीं पहुँच सकता है, मैं तो उनका सेवक हूँ, इसलिए हमसे वो बहुत श्रेष्ठ है। अब यहाँ तक था भाग भक्त, अब भक्त से चला गया प्रिय। अब वहाँ पर जब पहुँचे पांडवों के पास में, उनको देख करके आश्चर्य हुए और उनको पूजा करने के लिए गए, तो उन्होंने छठ द्रव्य छीन लिया और उसी द्रव्य से नारद जी की, नारद जी बल्कि वो पूजा कर, नारद जी ने वो सब चीजें ले ली और उनकी पूजा कर। मैं आज तक तुम लोगों का महात्मा नहीं जानता था, किंतु हनुमान जी से मैंने तुम्हारा ये सब सुना, जो तुम लोग कितने श्रेष्ठ हो मैंने बतलाया, जिसे मैं यद्यपि ऐसा, हम लोग पांचों और द्रौपदी और कुंती मैया, किंतु फिर भी हम लोगों में मर्यादा अधिक है। कृष्ण जिस प्रकार से अपने हेलमेल से जो मिलते हैं जुलते हैं, यहाँ पर मर्यादा की एकदम कमी हो जाती है। वह है द्वारका। अब द्वारका धाम में जाइए, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, कोई उनके नाती हैं, कोई बड़े दुलारे उनके पोते हैं, पड़पोते हैं, सब उनकी गोदी में बैठते हैं और सबके वो किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ, किसी के ससुर हैं, किसी के कुछ हैं, इसलिए वहाँ पर आ जाए। तब वहाँ पर उन्होंने पहुँच, अब यहाँ पर हो गए उद्धव इत्यादि भक्त। वहाँ पर जब पहुँचे उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा करनी आरम्भ की, उन्होंने कहा कि हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ उद्धव है, इसलिए उद्धव यहाँ पर द्वारका के लोगों में भी परिक्रमा में भी प्रियतम है। इसलिए वो जो सेवा कर सकते हैं द्वारका की, सत्यभामा रुक्मिणी प्रति भी नहीं कर सकते। क्या सेवा उनको सबसे अभीष्ट सेवा क्या है? ब्रज के भावों को स्फूर्ति कराना उनके हृदय में, उसको स्मरण कराना, इससे बढ़कर क्या और किसी चीज से प्रसन्न नहीं है, इस चीज को कौन कर सकता है? ये इसलिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा और उद्धव वहां से वैसे हृदय रस भावित होकर के जब आए तो इनके अखंड जो सत्यभा मारुक्मिणी के लिए भी संभव है, इसलिए यज्ञ। किंतु उनसे भी उद्धव जी के पास में जब गए तो उद्धव जी ने इनका भाव को समझाया, कहते देखो हम कभी प्रेम का भी पौ नहीं जानते, हम तो यही चाहते हैं आशाम हो चरण रेणु दिशा, जिनके अधिक जिनके अत्यंत प्रेम में बसीभूत है कौन? कृष्ण स्वयं। ये राधा रमण भक्ति का आश्रय क्या है? राधा रमण के लिए चाहे, ये भक्ति का आश्रय। ऐसी भक्ति के करने से, भगवान की भक्ति करने से, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन ये सब नौका पंचदा करने से विषय वासना और संसारिक ये सब चीजें अपने या अनायास ही दूर हो जाती है और उस परम पुरुष को भी वशीभूत कर लेती है जो भक्ति। ऐसे भक्ति का पहले प्रणाम करके सनातन गोस्वामी ये सब बंद कर रहे हैं, यही मंगलाचरण भक्ति देवी को प्रणाम कर। इसी तरह से उन्होंने प्रणाम किया, जय जय वृंदारण्य में तन मुरारे रमेश सदा का पालन गोपी
आनंद बिंद परितुंडल मंदिराय
यही बताया। और शंकर जी के लिए वो वंदना,
वृंदावन अवनिपते
वृंदावन अवनिपते, चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा के लिए करा, ये सब वंदना करके इन सब विषयों को। अब वहां से क्रम से उत्कर्ष और महिमा बतलाते हुए ब्रज विच्छेद में कृष्ण मानो क्या हो हल्ला कर, उद्धव आदि क्या क्रम विकास बतलाया और उद्धव ने क्या कहा? वंदे नंद ब्रजेश्वरी नाम, मैं तो उनके चरण की धूलि की बहुत दूर से वंदना करता हूं, इसलिए यदि उनके प्रियतम भक्त हैं पूर्ण कृपा पात्र, पूर्णतम कृपा पात्र ब्रजवासी, और उसमें भी पूर्णतम श्रीमती राधिका जी उनका नाम नहीं लिया। अब इसके बतलाने के बाद में कृष्ण बतला रहे हैं, नारद जी ये करते हुए चले जा रहे हैं और जब वहां पर पहुंचे उद्धव जी के यहाँ तो यही प्रसंग चल रहा था, उद्धव जी से और नारद जी से, वो उनको बतला रहे हैं गोपियों की महिमा। और उसी समय में रात में सोए हुए थे कृष्ण सत्यवान रुक्मिणी इत्यादि के पलंगों पर, और उनकी चिंता करते करते रो रहे हैं। ब्रज के विच्छेद में कृष्ण का विलाप, और उसी समय में कौन नव वृंदावन करते करते बलदेव और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित क्यों हुए? जब वो विलाप कर रहे थे तो रानियों ने आकर के रोहिणी मैया जी से कहा, रोहिणी मैया ने कहा ये बड़ा कपटी और क्रूर है, इसका रोने का कुछ कपटता इसमें है, ब्रजवासियों को प्यार नहीं करता, यदि करता तो वो वृंदावन में उनको छोड़कर के चला जाता और एक बार भी नहीं जाता, और कपट रोता है कपट रूप में, इसलिए इस पर हमारा विश्वास भी नहीं होता है, इसमें भी कुछ गहरी चाल है। बलदेव जी ने कहा जैसे मैंने इनको बहुत बार कहा जाने के लिए किंतु एक बार भी ये गए नहीं, उपाय पूछते जी उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, इसलिए ये कपटी धूर्त हैं, इसलिए इनको छोड़ करके मैं चला गया और प्रतिज्ञा करके आया कि मैं जरूर कृष्ण को लेकर, किंतु ये धूर्त और कपटी जाता है। तो कृष्ण की सुन करके बड़े दुखी हुए और कुछ रोने से लगे। उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी बतलाओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए गोपियों के लिए, गोपों के लिए। उन्होंने कहा कि बिना वहां पर गए उनको कोई भी संतना नहीं होगी, मैं लाख आपको बार बतलाया, इसका अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तब कृष्ण कहते हैं एक पत्र लिखो,
मैं जा रहे हैं, जा रहे हैं, सब जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं,
पत्र लिखो। बलदेव जी कहते हैं ये धूप पत्र लिखा है। उद्धव जी कहते हैं कि पत्र लिखने से ये नहीं होगा। तो बलदेव जी ने जब कहा कि धूप तो ऐसा ही करता है, तो उन्होंने कहा सचमुच में मैं खुद मेरे जैसा कोई धूप और कपटी नहीं, इसलिए मैं गोपियों को के पास यथार्थ कृति नहीं करता, और ऐसे करते करते उनको ऐसा हो गया कि मूर्छित हो गए। बलदेव जी भी उनको आलिंगन करते गोपी मूर्छित हो गए, सब लोग बड़े कंपित हो गए, रोने जाने लगे। इतने ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उनके कान में कुछ कहा और दोनों को वरुण पर बैठा करके वरुण का आह्वान किया, और उनको झट नौ वृंदावन एक सृष्टि करके उसमें वृंदावन का जैसा भाव वैसा ठीक करके और उसमें ये यशोदा जी की मूर्ति, नंद बाबा की मूर्ति, गोपियों की मूर्तियों को यथा स्थान पर उन्होंने ठीक से बना करके मूर्ति बनाया, और ऐसा बनाया जैसे देखने में ठीक वैसे ही, और कृष्ण को और उनको बलदेव जी को गरुड़ पर चढ़ा करके गरुड़ जी वहां पर ले जाकर के नौ वृंदावन में उनको समुद्र के किनारे जमुना के रूप में वहां पर लेकर के उनको रख दिया, शोक सुंदर सजाया हुआ है, और वहीं पर नंद भवन बनाया गया है, यशोदा मैया एक तरफ खड़ी है और रोहिणी मैया को उनके साथ में दे दिया, बस रोहिणी मैया जी गई है और बलदेव जी, बलदेव जी ने उनको सबसे पहले उनको मूछा छूटी, तो ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया जैसे अपना एका रूप ब्रज का जैसा बनाओ, जैसे गो चारण करने के लिए ग्वाले जाते हैं वैसा बनाओ। ठीक उन्होंने कृष्ण को हाथ में बंसी दे दी, मयूर मुकुट लगा दिया, वैसे कानों में कुंडल लगा दिया, और उनके कपड़े लत्ते जैसे गो चारण के होते हैं ठीक वैसा कर देने के बाद में अब उनको उठा करके, अरे कन्हैया वो गाय चरने नहीं जा रही, मैया बुला रही है, पिताजी बड़े व्याकुल तुम्हारे लिए हो रहे हैं, इस त्यागी का करके बड़ी मुश्किल से उनको
सखा लोग खड़े हैं,
कृष्ण ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, अरे क्या देख रहा है, चलो जल्दी से गाय चराने के लिए। तब कृष्ण उसी में उठ करके बोले मैं आगे चलता हूँ, गाय वहाँ पर अंभा रही है, गाय जा नहीं रही है और सखा लोग वहीं पर खड़े हैं, मैं आगे चल रहा, तुम आओ, मतलब इसलिए जैसे ब्रज में करते थे आगे कृष्ण के लिए गोपियों से मिलने का सुयोग कर दे। कृष्ण ने क्या किया, मचलते हुए नृत्य करते हुए, मानो यशोदा जी मक्खन लेकर के खड़ी हैं, भाव में अंधी हो रही हैं, कुछ देख नहीं रही हैं, मूर्छित दृष्टि हो रही हैं, जा करके ऐसे कुछ जैसे गोपाल पर चलते हैं ना बच्चे
दिन दिन कर
हैं, ऐसे ऐसे करते हुए गए और कड़े लपक करके ऐसे दे दिया, मानो जो उनके हाथ से भी मैया नहीं समझ रही, और समझ रही मैया ठीक है, मैया ही है, और उसके हाथ से लेकर के बड़ी भंगी से उन्होंने मुख में देते हुए आगे जब बढ़े तो देखा गोपियों को, उसमें श्रीमती राधिका को देखा, ये प्राणेश्वरी हमारे ऊपर आप आज क्यों पसंद? इस प्रकार से भाव से देखा, उस समय राधा जी को देखकर के कृष्ण की जैसे भावभंगी हुई और मन्मथ मत रूप उस समय का प्रकाश देखा। जो वहां पर देखने वाले थे दूर से, कौन देख रहा था?
सत्यभामा
रुक्मिणी और पद्मा इत्यादि देख रही थी। इनके भाव ही एकदम ऐसे इतना सुंदर कृष्ण में ये माधुर मधुरता और ये रस भरा हुआ उसमें है और मादकता है इस रूप में, आज तक कभी कल्पना नहीं की थी। कृष्ण वही जो 15-16 वर्ष की उम्र में थे, 50-60 वर्ष की उम्र में, रूप में कोई अंतर नहीं हुआ, सब समय दिव्य किशोर उनका। किंतु यह भाव राधा जी के देखने से यह भाव आज एकदम दौड़ी उनसे मिलने के लिए, कृष्ण को आलिंगन करने के लिए। पद्मा जैसी निराश बूढ़ी शुष्क बल्कि भक्ति से विपरीत, उसके भी भाव जग गए और कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़। इतने में वहां उद्धव इत्यादि जो थे उन्होंने उनको नहीं जाने दिया। ये जो कृष्ण का सर्वोत्तम रूप है यही सर्वाधिक है और उस रूप की जो सेवा करते हैं वही क्या है? कृष्ण के कृपा भक्त के सर्वोत्तम पात्र। इससे बढ़कर क्या और कोई? जाओ एक आदमी सर्वोत्तम पात्र। तो उस समय में जबकि वो थोड़ी देर के बाद में जमुना के किनारे चले गोचारण करने के लिए, गैया मालूम आते गैया चल रही हैं। गोपियों को जो मूर्ति थी राधा जी इत्यादि को प्राणेश्वरी कहा, किसी को चुंबन किया, किसी को कुछ किया, किसी से बातचीत किया बड़े प्रेम से, किसी के
छोड़ी में लगा दिया,
अपनी बंसी लगा दी, किसी को त्रिभंग रूप में देखा, सबका चित्त मानो हरण करते हुए जैसे चलते थे ठीक वैसे। इस रूप को देखकर के सब ठगी सी रह गई, एकदम मूर्छित सी हो गई सब। और कृष्ण से मिलने के लिए पति भाव में, पति माने पति भाव में रोहिणी मैया के मैया के स्तन से दूध छाने वाला देवी के स्तन से, किंतु आज तक ऐसा भाव नहीं, जिसका जैसा भाव है वही भाव। उस समय में इनको छोड़ करके जब और गंभीर पन में जाते हैं, ये तो जमुना बड़ी सुंदर लहरा रही है उसके भीतर, और थोड़ा सा अरे जमुना तो है नहीं, जमुना का तो आर पार दिखता है, इसका तो आर पार नहीं, और उसमें बड़ी तरंगे उठ रही हैं, तो ये क्या है? ये क्या, मैं समुद्र के किनारे आया? मैं तो वृंदावन में, समुद्र यहाँ कहाँ से आया? फिर विचार करने लगे, फिर देखते हैं अरे ये तो है वृंदावन नहीं है, यहाँ पर कदम के बीच ये तो देख रहे हैं ये मूर्तियां हैं, ये सतमुच में वृंदावन तो कहाँ मैं हूँ, मैं समुद्र के किनारे आ गया। इस तरह से इतने में बलदेव जी आ गए, कहते हाँ भैया तुम द्वारका में, हम द्वारका में, तुमको ऐसे मुझा हो गई, इसलिए अभी ये दुष्ट लोग आक्रमण करने वाले हैं, अभी इनकी रक्षा करनी है, इसलिए हाथों में हथियार लेकर के उनसे लड़ने के लिए अभी तैयार हो जाए, उनका विद्वेष जगा करके उनका भावन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाव साबल्य, भाव
भाव शांति,
भाव शांति इत्यादि। एक भाव यहाँ पर पढ़ रहा है
भाव उत्पत्ति, भाव संधि, भाव
यहाँ पर एक भाव को दूसरा भाव द्वारा, अर्थात ब्रज के भाव को यहाँ पर द्वारका का मास जागता मैं भाव से शांति कर और उनको द्वारका का भाषी उनके हृदय में ये भाव। जब हुई नारद जी सामने द्वारका में लाए, वहां पर उनकी सभा बैठी और सभा में सत्यभामा और सब गोपियां ये रानियां थी, उन्होंने गोपियों की का महात्मा वर्णन, गोपियां का जो महात्मा वर्णन करने लगे तो सत्यभामा जी तुनक करके मान कर, उन्होंने दासी भेजा मान करके चली गई, सब लाओ पकड़ करके लाओ, और नहीं तो आज ही उसको
दुष्ट
दुष्ट सत्राजित की कन्या को वैसा ही है, उसको यहाँ से बाहर कर दूंगा राज, अपने राज क्या समझती है उनको, जहाँ सुनी एकदम उन सब दूर हो गया, कभी आज ही उसको बाहर कर देंगे, इसलिए जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके एक स्तंभ के आड़ में करें। कृष्ण यदि गोपियां चाहें आज तिल मात्र के समान इस द्वारका के समस्त रानियों को, समस्त वैभव को, सब कुछ होकर के चलाए एक सेकंड, मैं समझू ये गोपियों का प्रति विधान है। मैंने जो कुछ किया है गोपियों के लिए किया है, गोपियों को स्मरण करने के लिए किया है, इन लोगों के लिए नहीं किया। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? ब्रज की भाव की उद्दीपना के लिए। ये यही समझती है जब मैं इनके वशीभूत हूं, पर कोटि कोटि उन लोगों को उनके चरणों की एक धूलि पर नहीं उछाओ, इस चीज को समझे। उन लोगों का प्रेम कैसा पकड़ है, इसलिए स्वयं ये बतलाया कि हमारा सबसे कृपावा पात्र का कृपा पात्र कौन है? सर्वोत्तम। और गोपियों में भी कौन? नारद जी वहीं पर खड़े थे, नारद जी उनके हाथ जोड़ करके खड़े थे। नारद जी को कहा, आप जो कुछ कहिए मैं आपको दूं, आपके आज देखने से, आपकी उद्दीपना के कारण हमारी ये भाव, इसलिए आप जो कुछ। उन्होंने कहा, आपके आपकी कथाओं से, लीला की कथाओं से कभी किसी को तृप्ति ना हो, ये मैं मानता हूं। और इन कथाओं की श्रवण से और उन लीलाओं की स्थली जहां पर ऐसे ऐसे सुंदर भाव आपने प्रकट किए, कहां? वृंदावन में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में, गोराज गोवर्धन में, नंदगांव, बरसाना, भांडी बल इत्यादि में जो लीलाओं का प्रकाश आपने, उस भूमि का यदि आश्रय कोई ले तो ये सब रस उसके हृदय में अपने आप आपकी कृपा से
प्रति प्राप्त।
नारद जी सुनकर भगवान ने कहा, एवं मस्त ऐसा। इसलिए उन कथाओं का जो श्रवण करेगा, इस प्रकार से क्रम का विकास कृपा भर का कौन कौन के कृपा, इसका पहले खंड में निर्धारण किया। कैसे? श्रुति वेद इत्यादि मंत्रों के ऊपर, विशेष करके एक एक शब्द का उन्होंने 10-10, 15-15 प्रकार के अर्थ करके श्लोकों का अद्भुत अद्भुत अर्थ। जैसे द्वितीय खंड के तृतीय अध्याय में एक शब्द है रसव, 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 रसव मैंने क्या, भगवान की वो कथाएं जो रसव कैसी, इसी की 7 प्रकार के अर्थ उन्होंने किए हैं कि 8 प्रकार के। और रस का यहां से लिया, वैकुंठ से आरंभ किया और वहां से लेते 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 द्वारका, मथुरा, और मथुरा में भी बात दे करके शांत रस, वृंदावन में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, वात्सल्य में भी सख्य रस में भी कितने प्रकार, दास्य, दास्य में तो मिश्र, अर्थात सख्य वात्सल्य मिश्र दास। और इसके बाद में वात्सल्य में, वात्सल्य में नंद बाबा के वात्सल्य की अपेक्षा और अधिक। इसके बाद में ले आए मधुर रस, मधुर रस में सबका विचार किया, उसमें अष्ट गोपियों का भाव, इनमें भी कितने, 364 प्रकार के भाव। इनके बाद में और सब विचार ले आकर के सर्वोत्तम राधिका जी का भाव, जिसमें माधव मोहन इत्यादि उसी भाव के अंतर्गत में प्रौढ़ी बोध करके ये प्रेम, ये भगवान की कृपा पात्रता का लक्षण है। ये निर्धारण किया सनातन गोस्वामी पाद ने। और भी बहुत सी बातें हैं, हम लोग इसको और विचार कर रहे हैं जी। श्रील रूप गोस्वामी ने समय की तरफ में भी ध्यान रखा, कितना बच गया,
7-5
जाना है। गोस्वामी एक बहुत विशेष बात नहीं थी, जो भक्ति को चाहते हैं उन लोगों, और जब केवल डफली बजाते हैं भक्ति की डफली, उसमें रुचि नहीं है, साधन में हम उसको प्रतिष्ठित करेंगे इसमें नहीं है, केवल डफली बजाना जानते हैं। डफली बजाना में एक बकरी के 10 बच्चे हैं तो उसके तो 4 ही तो स्तन है, तो 4 तो उसमें पी रहे हैं और बाकी क्या कर रहे हैं, बकरी में सुअर, तो उनके बच्चे इधर उधर लपक रहे हैं, उनको दूध नहीं मिलता, लपकते लपकते जो एक दूध बिंदु मिल जाता है उसी से उनका जीवन मिलता। तो ऐसे ही भक्ति के लिए तो नहीं किसी तरह से आ गए हैं और भक्ति की डपली बजा रहे हैं, मैं भक्त हूँ, किंतु यथार्थ में इसके भीतर डूब करके रसस्वादन करना नहीं,
डूब जाना
इस, ये जो उन्नत जो भक्त भगवत कृपा निर्धारण खंड में जो भगवान के सबसे सर्वोत्तम कृपा इत्यादि है, उसको पाने के लिए सर्वोत्तम चेष्टा होनी चाहिए, ऐसे तैसे डफली बजाने से नहीं होगा। उसके लिए जैसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और ब्रज के लोगों ने जैसे गंभीर रूप में साधन भजन किया, ऐसे साधन भजन करना होगा। अभी प्रतिष्ठा में हम दूसरे दूसरे बातों में, कर्म मिश्रा भक्ति में, ज्ञान मिश्रा भक्ति में, सगुणा भक्ति में जैसे लगे हैं, इनसे नहीं होगा। जब तक ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जी गोस्वामी जैसे, कृष्णदास कबीराज गोस्वामी इत्यादि के समान जैसे, जब तक कि संपूर्ण रूप में गोपियों के ब्रज के हम अनुगमन नहीं करेंगे, उनके अंग नहीं होंगे और वैसा ही कठोर साधन नहीं करेंगे, कैसे? संख्या पूर्वक नाम गान कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार। अभी एक अभी एकादशी हम नहीं करता था, अभी भगवान के नाम लेने में अभी कोई रस नहीं मिलता है, रुचि ही नहीं। अभी हम देखते हैं आकाश में, आज तो कौन सा दिन है, जेठ का महीना है, आज तो गंगा दशहरा आ रहा है, इसलिए आकाश में देखते हैं
पतंग कितना
पतंग देख रहे हैं, कोई कोई बैठ करके पतंग को देख रहा है, पतंग कैसे लड़ रही है, ये भक्ति है न क्या है? ये मनोरंजन से नहीं होगा भाई, और जिस चाल से हम किस चाल से चल रहे हैं, इस चाल से भी भक्ति वो नहीं होगी। हाँ, साधारण रूप में कर्म ज्ञान मिश्रा सगुणा भक्ति होगी, इसलिए उतना ही त्याग, उतना ही कठोर परिश्रम। कभी चना को भी वो भी मना, और कभी सोना को भी वो भी मना, कभी आध घड़ी 24 मिनट सो लिया, 48 मिनट सो लिया दिन रात, और अभी हम लोग कितना, हम तो सोते हैं करीब करीब 12-13 घंटे सोते हैं, तो बदलाव को खत्म क्या करें, आराम से तेल मारना, ये करना, वो करना, घूमना, इसी में तो खाने पीने, इसी में हमारा सब समय लग जाता है, भजन कहाँ करते हैं। तिलक करने में 1 घंटा लगा देते हैं, और दर्पण देखते हुए तिलक कर रहे हैं, सीधा करने में 1 घंटा लग गया, फिर केश को प्रसादन कर रहे हैं उसमें कितना समय लग गया, और कपड़े पहन रहे हैं देख रहे हैं ये कैसा ठीक हुआ कि नहीं, ये कपड़ा लाल है कि ठीक है कि नहीं है, किसमें समय लगा, तो भजन कब क्या करें, इसलिए ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? संख्या पूर्वक नाम गान गति कालावसान एक तो निद्रा हार विहार, हार माने आहार, आहार विहार निद्रा, हमारा जीवन बेकार गया, हमारा जीवन बेकार गया, प्रतिष्ठा आ रही है तो कहने सुपरी की विष्ठा, ये हमारा भजन ही नष्ट कर दिया, दिन रात तो उनके पचड़ में पड़े रहते हैं, कभी इनको उनको प्रसन्न करते हैं, कभी उनको प्रसन्न करते हैं, कभी उनको प्रसन्न करते हैं, इसी प्रसन्न करने में सारा दिन, ठीक है, हमारा जीवन ये बेकार, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे कृष्ण मिले, कैसे भगवान के खिलाफ बात सुनिए, एकदम छट छट करके दर्द कर रही है, कहाँ नींद, कहाँ खाना पीना आराम, कहाँ क्या, ऐसा यदि भजन करें तब तो देवदार खुशी में, नहीं तो ये भक्ति कैसे होगी। इसलिए इस चीज को समझें, क्या चीज समझें, भक्ति के सामने में रूप गोस्वामी ने लिखा है, श्रीमत प्रभु पतांबु सर्वा भागवतामृते व्यक्ति कृतास्ति गुढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी, श्रीमत प्रभु पदाम्भोजे सर्वा भागवताम, सनातन गोस्वामी ने अपना सर्वस्व महाप्रभु के चरणों में समर्पण किया, और उन्होंने और भक्ति जो प्रेममयी भक्ति, रसमयी भक्ति जो अत्यंत गूढ़ है, उसको भी जीव कल्याण के लिए, किनके लिए, रागानुगा भक्तों के लिए, जो इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, जिसमें रुचि आई है, अभी हम लोगों में रुचि है कि नहीं, यदि विचार करने लग जाएं तो कंबल को में से केश को अलग करते 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 कंबलिया में क्या रह जाएगा, कंबल से लुम होते हैं ना, उसमें लुम से तो बनते हैं, एक एक लुम को हटाते जाओ, हटाते हटाते अंत में क्या हुआ, तो देखेंगे संत में ये रुचि आई कि नहीं, हमारी अभी हमारी रुचि कहाँ है, अभी विचार करके हम लोग देखें, सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता, अपने लिए कहा जा सकता, अभी विषयों के लिए रुचि है, प्रतिष्ठा में रुचि है और सब बातों में रुचि है। यदि एक कोई आदमी, एक कोई व्यक्ति यदि कहते तुम्हारी भक्ति नहीं है, मन खराब हो जाएगा, जब हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ कहाँ से आए ये सबके लिए कहते हैं ये रुचि भी नहीं है भक्ति नहीं है। बेकार काम ने खास काटा अब तक, कल जैसे गुरु से जरूरत नहीं है ऐसे हमको पाठ की प्रेरित है, इसलिए वो कहते हैं ये उन लोगों के लिए जिनको रुचि है भक्ति सिद्धांत अत्यंत गुरु होने पर भी, जो प्रेम की बात कही गुरु होने पर भी भक्ति सिद्धांत माधुरी का उन्होंने प्रकाश किया है उन्हीं के द्वारा। फिर उन्होंने अपने ग्रंथों को निर्माण किया, कौन? रूप गोस्वामी जी, ये कहते हैं गुरु के रूप में उनको वर्णन किया है, ये हमारे गुरु। किसी किसी मत के विचार से ये भक्ति जो बतलाया ये दो प्रकार की कौन कौन? एक विहिता एक अविहिता। विहिता माने वेद विहित शास्त्र विहित भक्ति अर्थात वैदिक भक्ति, और एक अविहिता शास्त्र की मर्यादाओं की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, ये अनुराग को अनुगमन करते, इसलिए ये हो गई अविहिता। ये मुक्ता फल में कहा गया, मुक्ता फल किसका है? अरे लीला शुक्ला, लीला शुक्ला मुक्ता फल में कहा गया। किसी किसी के मत से इसको वैधि और अगानुगा भक्ति भी कहते हैं। जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में कहा है रागानुगात्मिका भक्ति का ही नामांतर अभिहिता भक्ति है। जी गोस्वामी ने
रागात्मिका
भक्ति का नामांतर ही अभिहिता भक्ति है, किंतु ठीक से विचार करने पर अब और उसको विचार करके पर नित्य सिद्ध लीला परिकर, लीला परिकरों भगवान के जो लीला परिकर हैं उनकी जो भक्ति है सेवा है वो रागात्मिका व रागमयी भक्ति है, क्योंकि गोलोक वृंदावन के अंतर्गत में नित्य सिद्ध जो उनके परिकर हैं उन लोगों को रागात्मिक अथवा रागमय कहा जाता है, उन्हीं की भक्ति को रागात्मिका अथवा रागमयी भक्ति कहा जाता है, क्योंकि
नित्य सिद्ध परिकर,
नित्य सिद्ध परिकर जो गोलोक वृंदावन उन्हीं की उसी भक्ति की रागात्मिका भक्ति या रागमयी भक्ति की अनुगामी भक्ति का नाम है
रागात्मिका।
यहाँ तक तो ठीक है, किंतु एक प्रकार की भक्ति और भी है, इस चीज को नई चीज समझो, एक और भक्ति है क्या? ये सनातन गोस्वामी ने इसमें बतलाया है वो रागानुगा भी नहीं है वैदिक भक्ति है। दोनों में से कोई नहीं, किंतु भक्ति है ना? वो वैदिक भी नहीं है, शुद्ध रागानुगा भी नहीं है, शुद्ध रागानुगा नहीं है, रागानुगा है किंतु शुद्ध नहीं, मिश्र संकीर्ण है,
मिश्रा।
अब ये भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा है वैदिक भक्ति के लक्ष्य में उन्होंने कहा राग द्वारा अनावाप्त, जिसको राग नहीं अभी है ऐसे भक्ति को, रुचि नहीं है जिनमें उनको कहते हैं कभी राग उत्पन्न नहीं है,
राग द्वारा
अनवाप्त, अनवाप्त माने राग उसमें नहीं है, राग के अभाव जहाँ, राग का अभाव जहाँ है उसको कहते हैं शास्त्र शासन के अनुसार नहीं,
जिसमें तृष्णा उत्कंठा लालसा नहीं है।
रुचि के द्वारा अनुबुद्धताई, अनुबुद्धताई बोलते हैं यहाँ पर, राग द्वारा अनुवाक्त माने क्या? जिसमें रुचि के द्वारा वो भक्ति उत्पन्न है, अभी रुचि नहीं है, शास्त्र के मर्यादा में कथाओं को सुन करके भक्ति में प्रवृत्ति हुई है, इसको कहते हैं। और जहाँ राग की अनुगामी होकर के उसकी रुचि उत्पन्न होकर के उसको ले जाती है, लोभ उत्पन्न हो जाता है उस भक्ति में, तो उसको कहते हैं। अब ये जो अविहिता भक्ति जो बतलाया उसको हमारे जीव गोस्वामी जी दो भागों में बांटते हैं, कौन? एक कृष्ण माधुर्य का अवलंबन कर जो भक्ति होती है उसके प्रति जो लोभ होता है, कृष्ण माधुर्य के अवलंबन से उसके प्रति लोभ होने से जो भक्ति उत्पन्न होती है वो भी अविहिता है।
वो कृष्ण माधुर्य के अवलंबन से जो माधुर्य भक्ति होती है, और दूसरा है तत्परिकर गणे माधुर्य का अवलंबन, उनके परिकर गणों के माधुरी का अवलंबन करके, सेवा का माधुर्य अवलंबन करके जो लोग उत्पन्न होकर के इधर चलता है। एक कृष्ण के माधुर्य के प्रति लोभ होता है, और दूसरा होता है कृष्ण के जो परिकर हैं उनके भावों को देख करके लोभ होता है। इन दोनों में अंतर होगा ना? कृष्ण के लोग, कृष्ण के माधुर्य को देख करके लोभ का यह वर्णन कहां है ना? मद गुणसुति मात्रेण
मयि
सर्वगुहासे मेरे गुणों को सुनकर के, मेरी लीला कथाओं में जो मेरे गुण हैं, उपकारिता, उदारता, करुणा, भक्त वात्सल्य इत्यादि गुणों को सुन करके हमारे प्रति उनकी गति कैसे मति हो जाती है, अविच्छिन्ना धारावत अविच्छिन्न गति से उनके चित्त की वृत्ति दौड़ने लगती है, एक प्रकार से ये होता है। और क्या आत्मारामश्च मुनयो निर्गंधा गुरुक्रमे कुर्वन्त हैत्य के भक्तिम इत्थम भूत। भगवान के गुण ऐसे हैं जो उनका श्रवण करने से भगवान के प्रति आत्माराम योगियों का भी चित्त दौड़ जाता है। इसलिए ये कृष्ण का लीला माधुर्य इत्यादि सुन करके जो उसके लोक से भक्ति होती है, एक ये रगांगा भक्ति, और दूसरी क्या है?
भक्तों के भाव,
भक्तों के भाव, यशोदा मैया का भाव। कृष्ण को कैसा प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं, उनको उठाती बैठाती सब कुछ करती हैं। गोपियां कैसे उनको प्रेम करती हैं, कैसी सेवा करती हैं, उनके भावों के प्रति जो लोभ हुआ, ये एक प्रकार।